हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयु जय जी से लड़कर लुधियाना से चंडीगढ़ आ गई। वो आरफ का घर नहीं जानती थी, तो उसने गौरवी को कॉल करके आरफ के घर का एड्रेस लिया और सीधा उसके पास जाने के लिए निकल पड़ी। वो सिर्फ जय जी से ही नहीं, आरफ से भी गुस्सा थी। रात के लगभग 11 बजे थे। माहिरा के जाने के बाद आरफ घर पर अकेला था। वो टीवी में एक हॉरर मूवी देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था। उसके आसपास खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था। आरव ने सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कितना सुकून मिल रहा है अकेले घर में, आज तो मूवी की चुड़ैल भी अच्छी लग रही है। चलो अब तो मजे हैं, अकेले आराम से रहूंगा। काश जिंदगी हमेशा ऐसे ही हो और आराम से बीते। ऑफिस का काम करके घर आकर सुकून से एक हॉरर मूवी देखो और फिर अच्छा खाना खाकर सो जाओ। जब कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा तो ड्रिंक भी नहीं करूंगा, इससे दादी भी खुश रहेगी। आरव खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी डोरबेल बजी। उसे नहीं पता था कि बाहर आयु आई है। आयु बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो लगातार बार बार डोरबेल बजा रही थी। आरव ने इरिटेट होकर कहा, पता नहीं कौन आ गया मेरे सुकून में टांग अड़ाने। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे यार आ रहा हूँ, मेरे कोई पंख तो लगे हुए हैं नहीं जो मैं उड़कर आ जाऊंगा, वेट नहीं कर सकते क्या? आरव ने दरवाज़ा खोला तो सामने आयु खड़ी थी। उसे देखकर उसने जल्दी से वापस दरवाज़ा बंद कर लिया। आरव ने हैरानी से खुद से कहा, ये इतनी जल्दी यहाँ भी आ गई, कहीं उस मूवी की चुड़ैल तो इसका रूप लेकर नहीं आ गई है। कमौन आरव, क्या बकवास बातें कर रहा है, ये कौन सा लंदन से आई है, लुधियाना यहाँ पास में ही तो है, लेकिन इसे मेरे घर का एड्रेस किसने दिया होगा? वहीं आरव के वापस दरवाज़ा बंद करने पर आयु गुस्से में दरवाज़ा पीटते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो आरव खुराना, अब क्यों डर रहे हो? आरव ने तुरंत दरवाज़ा खोलते हुए कहा, ओ हेलो, मैं कोई डर नहीं रहा तुमसे, इतनी रात को तुम कर क्या रही हो मेरे घर के बाहर, और एड्रेस किसने दिया तुम्हें? आयु ने आरव को घूर कर देखा और फिर उसे धक्का देकर अंदर आते हुए कहा, दादी ने, और मेरा नहीं, हमारा घर। वो क्या कहते हो तुम मुझे, मिसेस खुराना? अरे तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर और तुम पर भी मेरा पूरा हक है। आयु की बातें सुनकर आरव हैरान रह गया। वो सिर हिलाकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, आजकल लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही हक की बातें नहीं कर रहे। फिर दरवाज़ा बंद करते हुए उसने तेज आवाज में कहा, लगता है तुम गुस्से में हो, होना भी चाहिए, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बिना पूछे मुझे पैसे जो दे दिए। आयु गुस्से में आरव को घूरने लगी तो आरव हंसते हुए वापस काउच पर बैठ गया और मूवी देखने लगा। उसे आयु के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आखिर यही तो आरव चाहता था, आयु उसके पास वापस चली आए। आयु कुछ पल बिल्कुल चुपचाप उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। आरव ने उसकी तरफ बोल करते हुए पूछा, पॉपकॉर्न खाओगी? भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन मैं ये पॉपकॉर्न नहीं खाऊंगी, आयु ने मायूसी से जवाब दिया। वो काफी थक गई थी। यहाँ और भी खाना रखा है, तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, आखिर तुम्हारे हस्बैंड का घर है, तुम पहले कुछ खा लो, झगड़ा बाद में कर लेना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव उठकर आयु के लिए खाने लाने लगा कि तभी आयु ने उसका शर्ट पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले तुमने मुझसे जबरदस्ती और धोखे से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और। आरव ने आयु की बात बीच में काटते हुए कहा, जबरदस्ती तो नहीं, हाँ धोखे से जरूर करवाया था, तो ये जबरदस्ती वर्ड अपने सेंटेंस में से हटा लो, वैसे तुम्हारी अपने डैड के साथ भी अच्छी खासी बहस हुई होगी ना। इतना कहकर आरव ने उसे चिढ़ाने की आई विंक की। इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया था, आयु हैरानी से आंखें बड़ी करके बोली। यस ऑफ कोर्स, मैंने सब जानबूझकर किया, लेकिन तुम्हारे लिए, ना कि तुम्हारे डैड के लिए, वो तो बेवजह ही बीच में आ गए थे, मुझे लगा जब तुम इस नोटिस को देखोगी तो शूट करने वापस यहाँ आ जाओगी, लेकिन मिस्टर ओबरॉय को भी ऐसे बीच में आकर पैसे नहीं भिजवाने चाहिए थे, आरव ने बिना कुछ छुपाए सब सीधे सीधे बता दिया था। आयु ने भी जयजी से इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, आरव को लेकर वो श्योर थी, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए हर हद पार कर देता था। आयु की आंखों में हल्की नमी उभर आई, वो कड़वाहट से बोली, अब तो तुम खुश हो ना, डिजायर्स को बिना कोई डील किए पूरे 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तुम्हें क्या लगा कि मैं वो पैसे रखने वाला हूँ, वो चेक तो मैंने कप का फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था, आरव ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, तुम्हें सुकून जो नहीं मिला होगा, सब कुछ इतना आसानी से जो हो रहा था, तभी मुझे कॉल करके जेठानी की तरह मेरे कान भरे, ये सब इसीलिए किया ना, ताकि मैं जाकर अपने डैड से झगड़ा करूं और यहाँ वापस आ जाऊं, आयु गुस्से में बोली। उसे आरव का प्लान समझते देर नहीं लगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी, मानो उसे कोई अवार्ड मिल रहा हो। हाँ, इस बार सही समझा, लेकिन अब उसका भी कोई फायदा नहीं है। मैंने तो दूसरी मॉडल भी रख ली है। अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी रह गई हो, मिसेस खुराना। आई वॉन्ट कि अब बस तुम मेरा घर और मुझे संभालो, आरव ने उसे परेशान करते हुए कहा। आरव की हरकतों पर आयु का मन कर रहा था वो उसके बाल नोच ले। आरव से डील करना आसान नहीं था। आयु ने उसे उसी के तरीके से जवाब देने का सोचा। आयु ने गहरी सांस ली और आरव की आंखों में देखते हुए कहा, फिर तुम्हें डिजायर्स पर केस कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना इन्फॉर्म किए मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें जो करना है करो, आरव बेपरवाही से बोला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आयु को लगा आरव हार मान लेगा, पर उसे तो जरा भी असर नहीं हुआ। आयु ने आगे कहा, मैं तुम्हारी लीगल नोटिस का जवाब देना चाहती हूँ। ऐसे कैसे तुम मुझे जाने दे सकते हो? अच्छा, तो एक हफ्ते में 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगी? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, इतना फेवर तो बनता है, आरव ने भौहें चढ़ाकर कहा। ओ हेलो, समझा क्या है तुमने मुझे? जब मैंने अपने डैड से फेवर नहीं लिया तो पति की भी जरूरत नहीं। भले ही मैं तुम्हें एक हफ्ते में 5 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकती, लेकिन एक हफ्ते में शूट तो कंप्लीट कर ही सकती हूँ ना। आयु की बात सुनकर आरव उसके आसपास आकर कुछ सूंघते हुए बोला, कहीं तुमने पी तो नहीं रखी है ना? आयु तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। वो चिढ़ते हुए बोली, दूर हटो मुझसे, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। लेकिन मैं तो करता हूँ। ओके सुनो, बेवजह की जिद मत करो। इतने दिनों में तुमसे 10 ड्रेसेस का शूट तो कंप्लीट हुआ नहीं, और एक हफ्ते में पूरा शूट कैसे कंप्लीट करोगी? ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, आरव इस बार गंभीर अंदाज में बोला। वो बिल्कुल नहीं चाहता था आयु जिद में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करे। डोंट वरी, मैं कर लूंगी, बस तुम मेरी नजरों से दूर रहना, आयु ने गहरी सांस लेकर कहा। ये तो अब हो नहीं सकता, आरव बोला। आयु ने कुछ पल सोचा। ये कॉन्ट्रैक्ट आरव की जिद और सनक का नतीजा था, पर आयु ने अब सब कुछ अपने ईगो और सेल्फ एस्टीम पर ले लिया था। आरव, मैं कल से शूट पर वापस आ रही हूँ और तुम्हारा शूट एक हफ्ते में कंप्लीट भी कर दूंगी, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि हमारे बीच क्या डील हुई है, आयु बोली। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आरव ने गहरी सांस ली और आयु को समझाने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, देखो आयु, मैं मजाक कर रहा था, तुम इसे सीरियसली मत लो। तुम देखने में ऐसी ही मुझे ठीक नहीं लग रही हो। अगर साक्षी को पता चला तो उसे बुरा लगेगा। और तुम्हें साक्षी दीदी के बुरा लगने से फर्क पड़ता है? आयु ने जल्दी से पूछा। हाँ, और क्यों नहीं पड़ेगा, साक्षी मेरी सबसे पुरानी और अच्छी दोस्त है, आरव ने जवाब दिया।
या फिर तुम उनसे अभी भी प्यार करते हो, अचानक आयु के मुंह से निकला। उसके दिमाग में मंथन की बात खर कर गई थी, जब उसने बताया था एक टाइम में आरव ने साक्षी को शादी के लिए प्रपोज किया था। आरव हंसा और बोला, लगता है वेकेशन टाइम में तुम और मंथन कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हो, तभी उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। देखो, उस टाइम भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं था, वो बस एक अट्रैक्शन था। अगर मुझे साक्षी से प्यार होता तो मैं उसे कभी रितेश से शादी करने ही नहीं देता। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे, मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं कैसे ना कैसे करके पा ही लेता हूँ। अब हो सकता है लोगों को मैं गलत भी लगूँ, कई बार इस चक्कर में मैं गलत कर भी जाता हूँ, लेकिन मेरा यही उसूल है, आयु ने उलझन भरे स्वर में कहा। मैं कुछ समझी नहीं, इसमें समझना क्या है? तुम्हारे साथ तो हो भी चुका है मिसेस खुराना। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे अपने कलेक्शन के लिए परफेक्ट लगी थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम मेरे लिए कभी भी मॉडलिंग नहीं करोगी, तो मैंने तुमसे धोखे से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। अब तुम्हें और जिसने भी उसके बारे में सुना उन सबको मैं गलत लगा, लेकिन मुझे ये गलत नहीं लगता। अगर आप अपनी पसंद की चीज़ को पाने के लिए एफर्ट नहीं करोगे तो फिर वो आपको मिलेगी कैसे, आरव ने बिना किसी फिल्टर के कहा। हाँ, उसके तरीके गलत थे, पर आज तक आरव ने जो चाहा था वो हासिल किया था। जब मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस थी तो तुम किसी और मॉडल को कैसे हायर कर सकते हो, आयु ने सीरियस अंदाज में कहा। क्योंकि तुमसे नहीं हो पा रहा था, आरव ने जवाब दिया। अब हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ और मेरी बात याद रखना, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, शूट मैं ही करूँगी, आयु ने अपनी तरफ से सब फिक्स करके कहा। इतना कहकर आयु वहां से जाने को हुई तभी आरव उसके सामने आ गया था। आयु का सिर उसकी चेस्ट से टकराते टकराते बचा। आरव ने आयु की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम वापस शूट पर आओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने फिर से मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि मैंने एक हफ्ते में शूट कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया है। अच्छा, मैं चलती हूँ अब, आयु ने जवाब दिया और जल्दी से वहां से जाने लगी। आयु नहीं जानती थी कि वो वहां पर आ तो गई है, लेकिन आरव की मर्जी के खिलाफ वहां से जाना मुमकिन नहीं था। ऊपर से रात भी काफी हो गई थी। आयु जब भी जाने की कोशिश करती आरव उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। आरव ने इस बार हल्के तरीके से कहा, अरे कुछ खा पी तो लो, खाना पीना छोड़ो, अपने पति का घर, उसका बेडरूम तो देख लो। उसकी बात सुनकर आयु गुस्से से आरव को घूरने लगी। आरव ने घड़ी की तरफ इशारा करके कहा, कल चली जाना, अभी लेट हो गया है। लेकिन मैं कहाँ सोऊंगी, तुम्हारे रूम में तो बिल्कुल नहीं सोने वाली। आई डोंट ट्रस्ट यू, अभी तुमने कहा कि तुम्हें जो चाहिए होता है वो तुम हासिल करके रहते हो, कल को तुम्हें मैं पसंद आ गई तो? आयु ने काफी बेपरवाही से कहा। पसंद तो तुम पहले दिन से ही हो, तो बचकर रहना मिसेस खुराना, आरव उसे परेशान करते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर आयु अजीब नजरों से उसे देख रही थी कि तभी आरव ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा मेरे रूम में नहीं माहिरा के रूम में सो जाना। अब ये मत कहना कि मेरे और माहिरा के रूम्स अलग क्यों हैं, मैं इसका जवाब तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। आयु ने हैरान होकर कहा, एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी। ओके तुम्हारी मर्जी, बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं उस चुड़ैल के रूम में बिल्कुल नहीं सोऊंगी। बाकी रूम्स काफी टाइम से बंद हैं तो उनका मेंटेनेंस सही नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं माही के कमरे में सोता जाता हूँ, आरव ने बीच का रास्ता निकालकर कहा। आयु ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। इस बार उसने ज्यादा जिद नहीं की, क्योंकि वाकई रात काफी हो गई थी और वो थक भी गई थी। आयु आरव के कमरे में सोने चली गई और आरव माहिरा के रूम में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसके कपड़े अभी भी इधर उधर पड़े थे। आरव जल्दी जल्दी माहिरा के कपड़े समेटने लगा। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, थैंक गॉड वो इस रूम में नहीं आई, वरना मेरे बारे क्या सोचती, जबकि मेरे और माही के बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आयु आरव के कमरे में आई। आरव ने उसके लिए खाना गरम करके उसके साथ दिया था। आयु पहली बार आरव के कमरे में आई थी। उसका इंटीरियर काफी क्लासी था, डस्की ब्लू और बेज कलर का। कहना पड़ेगा चॉइस काफी अच्छी है उस खड़ूस खुराना की, आयु बैठते हुए बोली। आयु को भूख लगी थी, इस वजह से वो पहले खाना खाने बैठ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में आरव की ही बातें चल रही थी। भले ही आरव ने आयु को बुलाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें की हों, लेकिन आयु ने जब एक हफ्ते में प्रोजेक्ट पूरा करने की जिद की तो आरव ने साफ मना कर दिया था। वो उसकी परवाह कर रहा था, ये सोचकर आयु के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ आयु इस तरह अचानक से लुधियाना से चंडीगढ़ आ गई थी, इस बारे में ओबेरॉय फैमिली पूरी तरह बेखबर थी। घर पर सबको लग रहा था कि आयु ऑफिस गई है, तो वहीं जय जी को लगा कि आयु उनसे लड़कर वापस आ गई है।